हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि सोनल परी कितनी बार उससे बात करने की कोशिश कर चुकी थी, तो इसीलिए तारा बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती थी और जल्द से जल्द अंदर जाना चाहती थी। लेकिन अब अक्षत के आ जाने पर उसका पूरा प्लान खराब हो चुका था। तभी तारा ने अचानक से लगातार अक्षत की आंखों में देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तारा को अपने जादू का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है, इस आशिक से बचकर निकलना है, तो उसे अपने जादू का इस्तेमाल करना ही होगा। ये सोचते हुए तारा ने अपनी आंखों में रंग बिरंगी रोशनी जगमगाते हुए अक्षत की आंखों में डाल दी। अब अक्षत एकदम से तारा के वश में हो चुका था, क्योंकि अक्षत एक मामूली सा इंसान था। हालांकि वो अहंकारी और थोड़ा अकड़ू स्वभाव का इंसान था और हर हाल में सोनल परी को पाना चाहता था, लेकिन अब तारा के जादू के आगे वो पूरी तरह से विवश हो चुका था। तब तारा ने तुरंत अक्षत से कहा, पहले तो अपने मुंह पर दो चांटे मार, क्योंकि तारा को उसने बहुत ज्यादा परेशान किया था। आज सिर्फ अक्षत की वजह से तारा बंगले में पहुंचने में लेट हो गई थी, तो इसीलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। अब तारा ने इतना ही कहा था कि तभी अक्षत ने खींच खींच कर दो चांटे अपने मुंह पर मार लिए। तभी तारा ने अक्षत को हुक्म दिया, अपने घर जा और सीधा जाकर सो जा। तारा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अक्षत को उसके वश से बाहर निकलना है तो उसे सबसे पहले घर जाकर सोना ही होगा। इसीलिए उसने अक्षत को हुक्म दिया था कि वो अपने घर जाकर सो जाए, और जल्दी ही अक्षत तारा के ठीक सामने से अपनी गाड़ी लेकर जाता हुआ अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। अक्षत के जाने के बाद तारा ने राहत की सांस ली और उसके बाद वो जल्दी से अमन के बंगले के अंदर गई। वो जैसे ही बंगले में गई, वो सीधा करिश्मा जी के कमरे में गई। उसने देखा कि करिश्मा जी अकेली थीं। अब तारा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और कहने लगी, करिश्मा मॉम, सोनल कहाँ है? तभी करिश्मा जी अपने चेहरे पर दुखी भाव लाते हुए बोलने लगी, बेटे, हमने तुम्हें कितना कितना बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमसे एक बार भी बात नहीं हो पाई। वो अमन कितनी ही बार सोनल को यहाँ से लेकर जाने की बात कर चुका था, लेकिन मैं हर बार उसे मना कर देती थी, लेकिन इस बार मैं उसे क्या कहकर मना करती, तो इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गया है। जैसे ही तारा ने सुना, वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो समझ चुकी थी कि अमन उसे अपने कमरे में लेकर क्यों गया होगा। तारा का दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोनल के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो, और वो ये भी जानती थी कि अगर अमन ने उसके साथ रिश्ता बना लिया तो अमन हमेशा के लिए उसे दूर हो सकता था। तो इसीलिए तारा जल्दी से अपने कमरे की ओर दौड़ने लगी। हालांकि उसने अभी भी सोनल परी का ही रूप ले रखा था, और जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक से वो काली शक्तियों के मालिक अमित से टकरा गई। और अमित सोनल परी को देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्या हुआ है मैडम जी, आप इतनी तेजी से दौड़ते हुए कहाँ जा रही हैं? अमित को अपने सामने देखकर तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो गुस्से से सुलग उठी थी, लेकिन अभी उसके पास उससे शालीनता से बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो जल्दी से बोली, सर, आप जानते हैं ना, मैं आपके मेहंदी के फंक्शन की तैयारी कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऐसा कहकर तारा परी जल्दी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक काली शक्ति का मालिक अमित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और सीधा तारा परी अमित के सीने से जा लगी। अब तो तारा परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार ये काली शक्तियों का मालिक अमित क्या करने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि वो जरूर सोनल के साथ अंतरंग होना चाहता था, क्योंकि इस वक्त तारा परी ने सोनल का रूप लिया हुआ था। तो इसीलिए वो गुस्से से अमित की ओर देखकर कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है सर, आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया मेरे साथ? सोनल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अमित हंसने लगा और कहने लगा, पता नहीं मैडम जी, जब से आपको देखा है ऐसा दिल करता है कि बस आपको देखता रहूं, और अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको आपके वक्त की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अमित की बातों का मतलब तारा परी ने समझा, वो पूरी तरह से गुस्सा हो गई थी, और उसका मन तो क्या क्या अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमित का मुंह अभी इसी वक्त तोड़ दे। लेकिन फिलहाल तारा परी को खुद पर कंट्रोल करना था, तो उसने अमित की ओर देखते हुए कहा, पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए। ऐसा कहकर जल्दी ही तारा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसकी ओर देखकर कहने लगी, आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है अमित सर, जो आप मुझे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आप जाइए और जाकर अपना काम कीजिए। ऐसा कहकर तारा परी लगभग अमित से खुद को छुड़ाती हुई अमन के कमरे की ओर भागने लगी, और जैसे ही वो कमरे में बिना लॉक के अंदर गई, उसकी सांसें थमकर रह गई। उसने देखा कि अमन ने सोनल यानी तारा परी, जो उसके रूप में वहां थी, का ऊपर का कुर्ता उतार रखा था। जैसे ही तारा परी ने ये देखा कि उसके पति अमन ने सोनल परी का कुर्ता उतार रखा था और वो बड़ी ही कामुक नजरों से उसे घूर रहा था, अब तो तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि वो वहां सोनल परी के रूप में मौजूद थी और सोनल परी तारा के रूप में मौजूद थी, लेकिन वो इस बात को भूल चुकी थी और जल्दी उसने जोरों से चीख मार दी। और जैसे ही अमन ने उस वक्त अपनी कमरी में इस तरह से मियां बीवी के बीच में उसे वेडिंग प्लानर को पाया तो उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था। वो गुस्से से सोनल की ओर यानी तारा परी की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे कमरे में आने की, यहाँ हाउ डेयर यू। ऐसा कहकर उसने गुस्से से तारा परी को खा जाने वाली नजरों से देखा। वहीं तारा परी एक नजर सोनल परी की ओर देख रही थी जिसने अपना सर झुका कर रखा हुआ था। तब तारा परी समझ चुकी थी कि उसने ये जो कुछ किया है सिर्फ अमन ने उसे जबरदस्ती किया है। तभी सोनल परी यानी तारा परी जल्दी से बोली, अमन सर मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि बाहर कुछ लोग आए हैं जो बहुत ज्यादा हल्ला काट रहे हैं, और माफ कीजिएगा मैं एकदम से कमरे में बिना लॉक किए आ गई, प्लीज आप एक बार जाकर देख लीजिए। जैसे ही तारा परी ने किसी लोगों के आने का कहा अब तो अमन काफी हद तक हैरान परेशान हो उठा था और कहने लगा, आखिरकार कौन मरने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर अमन गुस्से से अपनी कमीज पहनता हुआ वहां से निकल गया। अब अमन के जाने के बाद सोनल परी ने अपना कुर्ता पहना और वो बेड से उतरकर तारा के सामने जाकर खड़ी हो गई। तारा सोनल परी की ओर ही देख रही थी, दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। तब उस खामोशी को तारा ने तोड़ते हुए कहा, इससे पहले कि अमन आ जाए हमें जल्द से जल्द एक दूसरे का चेहरा बदलना होगा। ऐसा कहकर जल्दी ही तारा और सोनल परी दोनों ने ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अपने असली रूप में आ गईं।
और अब तारा परी बन चुकी थी और सोनल परी बन चुकी थी। जैसे ही सोनल परी ने अपना रंग रूप वापस पाया उसने राहत की सांस ली और जल्दी से उसने तारा को गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती तुम कितनी ज्यादा चीज़ें बर्दाश्त करती हो तारा, वाकई तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो कितनी ही बार मैंने अमन को टालने की कोशिश की लेकिन आखिर में अमन नहीं माना, और वो कहने लगा कि वो मुझे खुद अपने हाथों से कपड़े उतारकर मुझे दूसरे कपड़े पहनकर चेक करवाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था तो इसीलिए उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए मेरा वो कुर्ता उतार दिया था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे पूरा का पूरा नंगा कर दिया हो। सोनल की बात सुनकर तारा ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी फीलिंग अच्छी तरह से समझ सकती हूँ लेकिन ये जो कुछ हुआ है अक्षत की वजह से हुआ है, तुम जानती हो उस अक्षत ने क्या क्या किया आज। ऐसा कहकर तारा परी ने जो कुछ भी आज अक्षत ने किया था वो सारी बातें सोनल परी को बता दी, और सोनल परी अब गुस्से से तारा की ओर देखकर कहने लगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अक्षत को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर सोनल परी जल्दी उस कमरे से बाहर निकल गई। वहीं तारा परी ने कुछ लोगों को अपने वश में करके उसे हवेली में हल्ला कटवाया था ताकि अमन उनके साथ थोड़ी देर बिजी हो सके और इस बीच उन्हें मौका मिल सके अपना रूप बदलने का। तो उन्हें वो मौका मिल चुका था और तब तारा ने मन ही मन में उन लोगों को वहां से रफ्ता रफ्ता होने के लिए कह दिया। तारा के कहते ही वो लोग जो अमन से बेकार की बात कर रहे थे उसे छोड़कर चुपचाप चले गए। अमन काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि हुआ क्या था, और वो जल्दी से अपने कमरे में आया और तारा को कपड़े पहने हुए देखकर गुस्से से कहने लगा, तुमने आखिरकार कपड़े क्यों पहन लिए, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अभी तुम्हें कपड़े पहनाकर चेक करवाता हूँ, आज तुम्हें क्या हो गया है, इतने ज़्यादा नखरे क्यों कर रही हो, पहले तो तुम एक बार में मेरी बात मान लेती थी। जैसे ही अमन ने ये कहा तारा केवल उसे घूर कर रह गई। अब वो उसे क्या बताती कि जिससे वो इतनी देर से अपनी बात मनवा रहा था वो उसकी प्यारी सहेली सोनल परी थी। तभी तारा ने जल्दी से अमन से कहा, अमन सर आपको मुझे कपड़े पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कपड़े पहनकर चेक कर सकती हूँ, और मैं वैसे भी तैयार होने जा रही हूँ, वैसे भी 5 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है और फिर मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे तारा ने ये कहा अमन केवल उसे घूर कर रह गया और कहने लगा, अब तुम्हारे आगे मेरी चलती ही कहाँ है, लेकिन याद रखना आज रात तो अपनी ही है, चलो ये 2-3 घंटे का फंक्शन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अपने पास समय ही समय है कपड़े उतारने और पहनाने के लिए। जैसे ही अमन ने ये कहा कि 2-3 घंटे का तो फंक्शन है पूरा कर लेते हैं, उसके बाद तो रात अपनी ही है और रात को हम दोनों दूसरे को जी भर कर प्यार करेंगे। अब अमन की बात सुनकर तारा केवल उसे घूर कर रह गई। अब उसे क्या कहती कि आखिरकार वो क्यों उसके जिस्म के पीछे पड़ा हुआ था। तभी तारा को याद आया कि उसे वो जादुई फूल भी हर कमरे के हर एक कोने में छूना था ताकि उसका शक यकीन में बदल सके और फिर वो दादा महाराज को उसे फूल भिजवा सके। तो इसीलिए तारा ने जल्दी से अमन से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप भी तैयार हो जाइए और देखिए कि अमित सर तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको अमित सर के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आए हैं आप सिर्फ अपने कमरे में ही घुसे रहते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि आपका उनका यहाँ आना बुरा लगा है। तारा की बात सुनकर अमन केवल उसे देखता रहा और कहने लगा,
सच पूछो तो मुझे वाकई उसका यहाँ आना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जिस तरह से पिताजी उससे ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरा रह रहकर दिल रो रहा है और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास लगता है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं उसके पास जाऊँ, उससे बातें करूँ। और तारा, एक और बात मैं तुमसे बहुत दिन से कहना चाह रहा था कि जब से मुझे पता चला कि वो अमित मेरा सौतेला भाई है, तब से मुझे ऐसा लगने लगा है मानो कि हमारी दोस्ती कहीं खोसी गई हो। दोस्ती का रिश्ता हमारा कब का खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं तारा अमन की बात समझ रही थी और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अब मतलब कितने नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। तो फिर बीच बीच में ऐसा क्या हो रहा था कि अमन का बर्ताव इतना ज़्यादा बदल रहा था? तो कहीं ना कहीं सारी बातों का सच जानने के लिए तारा को अब जल्दी ही रीत परी का इंतज़ार था। और लेकिन उससे पहले उसे उस फूल के द्वारा कन्फर्म करना था और उस फूल को कन्फर्म करने के बाद ही उसे रीत परी को बुलाना था। तो इसीलिए तारा किसी बहाने से अमन को वहाँ से भेजना चाहती थी। क्या तारा सारा सच पता लगा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।